ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मुरली यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो आपका योग बिल्कुल सहज हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने आज, किस बात के ऊपर थी? योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की विधि। योग सहज हो जाएगा। तो क्या बाबा ने, दो प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे, कौन से? एक है सदा योगी, और जो सदा योगी होते हैं उसका रिजल्ट हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे हैं नहीं, दूसरे एक हैं सदा योगी, तो दूसरे कौन हैं? केवल योगी। हाँ, वो योग लगाने वाले योगी और वो नेचुरल योगी, सहज योगी। तो आप लोग कौन हैं, पहले नंबर वाले या दूसरे नंबर वाले? बोल ही नहीं रहे, दूसरे नंबर वाले हैं। पहले वाले हैं ना, सदा योगी। अच्छा, बाबा ने कहा जो दूसरे नंबर के हैं वो भी बेचारे मेहनत तो करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि बाबा तो एक जैसा सबको ज्ञान सुनाते हैं, लक्ष्य भी हमारा एक है, ज्ञान भी एक है, है ना? लेकिन वो मेहनत वाले या कभी कभी वाले ऐसा क्यों, सदा योगी वो क्यों नहीं बन पाते? बाबा ने कहा कई बार वो पुरुषार्थ करके, फास्ट पुरुषार्थ करके वो भी कभी कभी योग का अनुभव कर पाते हैं, सदा योग का, बाकी वो सदा योग का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन एक है जो नेचुरल सदा योगी बन करके रहते हैं, सहज योगी बन के रहते हैं। अच्छा, बाबा ने फिर बताया कि सहज योगी है ना, निरंतर योग युक्त वो कौन रहता है? ब्राह्मण परिवार में सबसे नंबर वन कौन है? आप लोगों ने मुरली बड़ी ध्यान से सुनी है, उत्तर तो बड़ा अच्छा देते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, दिव्यता कहो, वो क्या है? योग युक्त और युक्ति युक्त, है ना? ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। ब्राह्मण जीवन माना ही सदा योग युक्त, सहज योग युक्त, नेचुरल योग युक्त, और इसमें ब्रह्मा बाबा ने नंबर वन। तो बाबा ने कौन सी विधि अपनाई जिससे नंबर वन गए? सबके अंदर से ज्ञान छलक रहा है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने विधि अपनाई सारथी और साक्षी, और इस विधि के द्वारा बाबा नंबर वन गए। हमें भी नंबर वन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भी है ना, ये विधि अपनानी पड़ेगी। बाबा ने विधि अपना करके दिखा दी है ना, तो हम भी जितना सारथी और साक्षी बन करके रहेंगे उतना क्या बन जाएंगे? योग युक्त। और तो सारथी का मतलब क्या बताया? अच्छा, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा सारथी बन करके इस रथ को चलाने वाली। जब हम आत्मा बन करके, आत्मा रथी बन करके, सारथी बन करके इस रथ को चलाएंगे तो क्या फायदा होगा? देह भान मिटता जाएगा, और जब देह भान मिटता जाएगा तो क्या फायदा होगा? तो हम सहज योगी बन जाएंगे, है ना? आत्मवानी स्थिति में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी, नेचुरल योगी, और देह भान में आएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या फायदा बताया कि आत्म अवमानी बन करके रहोगे, सारथी बन करके इस रथ को चलाओगे, शरीर रूपी रथ को चलाओगे, तो दूसरा फायदा लगता है आज की सारी मुरली आप लोगों ने रट लिया है। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि ये सारी कर्मेंद्रियां हमारी कंट्रोल में आ जाएगी, हम क्या बन जाएंगे, कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, है ना। और फिर माया, बाबा ने कहा कि माया जो धोखा देती है ना, विघ्न डालती है, वार करती है, तो सबसे पहले किस पर वार करती है, हाँ, कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के वसीभूत बना देती है। अब जब हम कर्मेंद्रियों के वसीभूत बन गए तो क्या हो जाता है, है ना, एक भूत फिर सारे भूतों को निमंत्रण दे देता है ना। एक भूत अंदर घुस गया तो वो सारे भूतों को आह्वान, आ जा भाई, दरवाजा खोल देता है, फिर सारे भूत अंदर में आ जाते हैं, फिर हमसे उल्टा कर्म होता है। इसलिए बाबा ने कहा सारथी बन करके रहोगे तो कोई भी कर्मेंद्रियां तुम्हें धोखा नहीं देंगी, तुम आत्मा राजा बन करके रहोगे, कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके रहोगे, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहोगे, तो योग सहज हो जाएगा। और बाबा ने कहा है जो बनेंगे आज स्वराज्य अधिकारी वही भविष्य में क्या बनेंगे, विश्वराज्य अधिकारी। अब इसमें चाहे कोई नया हो, कोई पुराना हो, कोई एक साल से हो, दस साल से हो, बीस साल से हो, सबके लिए नियम एक, कौन बना है स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी माना मन बुद्धि संस्कार सहित सभी स्थूल कर्मेंद्रियों के भी मालिक, आत्मा राजा बन करके रहे तो भविष्य में राज्य अधिकार मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहते हैं भविष्य में राज्य अधिकारी, या कुछ भी बाबा बना दे चलेगा, राजा बनना चाहते हैं ना, तो भविष्य में वो राजा बनेगा जो आज राजा बन करके रहेगा। हम अपने ऊपर के ही राजा नहीं बन सकते तो भविष्य में कैसे बनेंगे, है ना। फिर बाबा ने सारथी का दूसरा अर्थ क्या बताया कि सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर वन प्राप्त किया स्टेज। अब कई बार बहुत सुंदर बाबा ने एक रहस्य की बात बताई कि कई बार कई लोग पूछते कि ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा क्यों आता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन का ही आधार क्यों लेता है और दूसरे का क्या नहीं ले सकता है क्या। तो बाबा देखो इसमें कितना सुंदर बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा क्या बन करके रहे, सारथी बन करके इस रथ को चलाया, इसमें ब्रह्मा बाबा नंबर वन रहे तो शिव बाबा ने भी इसका आधार लिया, इसके रथ का आधार लिया, क्योंकि ये सारथी बन करके रहा नंबर वन, सभी ब्राह्मण आत्माओं में ब्रह्मा बाबा नंबर वन, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना। हाँ, तो बाबा ने कहा सारथी, अब बाबा समान बनने में भी आप क्या करो, फॉलो फादर करो। तो जब हम सारथी बनकर के रहेंगे तो कोई भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होंगे, कोई भी शक्तियां हमें धोखा नहीं देती, नहीं दे सकती। कई बार हम कहते हैं ना क्या करें, पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार है ना, ये हमसे उल्टा काम हो जाता है। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार वो तुम्हारे संस्कार हैं क्या, वो किसके संस्कार हैं। और बाबा ने एक मुरली में कहा पुराने ते पुराने संस्कार तो तुम्हारे आदि और है ना अनादि संस्कार हैं, वो तो बहुत रायल संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, शांति के संस्कार हैं, सुख के संस्कार हैं। ये मध्यकाल के संस्कार, रावण के संस्कार को तुमने अपना कहां से बना लिया? हाँ, कहां से आ गए? तो बाबा ने कहा है ना, ये संस्कार कहां से आते? जब हम देह भान में आते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब पुराने संस्कार तुमसे उल्टा काम करा सकते आ सकते हैं, तो क्या आपके दिव्य संस्कार, नए संस्कार, अच्छे संस्कार, जो तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं, तो क्या वो नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं ना। तो जब हम पुराने संस्कारों के वशीभूत होते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है, है ना। अच्छा, फिर मेहनत में हमें याद आता है कि हम सारथी हैं, सारथी हैं तो उसको भगाने की मेहनत करते हैं, और मेहनत मेहनत कैसे होता है? युद्ध, है ना। जब हम युद्ध करते हैं, तो युद्ध में क्या होता है? मेहनत। तो युद्ध वाली स्टेज को, मेहनत वाली स्टेज को योग युक्त कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो योग युक्त अर्थात कोई भी मेहनत नहीं, सहज योगी होगा, वो सहज होगा, हर प्रकार के मेहनत से मुक्त होगा। तो सार रूप में क्या बाबा ने बताया? योग युक्त होने की विधि, क्या बनकर के चलना? सारथी बनकर के चलना। और फिर बाबा ने कहा, जब तुम सारथी बनकर के चलेंगे, तो क्या ऑटोमेटिक बन जाएंगे? साक्षी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। साक्षी होकर देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, नेचुरल, आपकी वो साक्षीपन की स्टेज नेचुरल हो जाएगी। फिर माया का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ नहीं सकता, आप निर्लेप स्थिति। अच्छा, आगे बढ़ो। तो अब सार रूप में ये समझ लेना, सारथी, ठीक है ना। अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बाबा ने सहज विधि बता दिया कि सहज योगी, नेचुरल योगी बनना है तो सारथी समझ करके चलना है। दूसरी बात, टीचर्स बहनों से मिलते हुए बाबा ने क्या कहा? आगे बैठना अच्छा लगता है ना, तो हाँ, जैसे आगे बैठने में अच्छा लगता है, वैसे आप सब ऐसा उत्तर दे रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, पूरी मुरली एकदम कंठस्थ। अच्छा, वैसे आगे बढ़ने में और किस चीज में? बाप समान बनने में, पहले मैं। दो प्रकार का मैं बताया, एक है, एक अच्छी बात है, एक है ईर्ष्या वाला मैं और एक है समान बनने वाला मैं। तो ईर्ष्या वाला मैं क्या करता है? पीछे ले जाता है, है ना, हमें लास्ट नंबर पे ले जाता है। और समान बनने वाला जब मैं आता है, तो वो कहां ले जाता है? फर्स्ट नंबर में ले जाता है। तो कभी भी ईर्ष्यावश मैं ना आवे, लेकिन सेवा में मैं, बाप समान बनने में मैं। और आगे बाबा ने क्या कहा? टीचर्स अपने को क्या समझे? निमित्त, है ना, निमित्त है हम सबके। जो कर्म हम करेंगे, मुझे देख सब करेंगे। अगर आपने उल्टा काम किया, आपको देख करके जितने लोग भी करेंगे, उनका तो बनेगा ही विकर्म, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें देख करके दूसरों ने विकर्म किया। मानो आपने क्लास में आना बंद किया, आपको देख करके जितने लोग क्लास में आना बंद करेंगे, सबका बोझ हमारे ऊपर, क्योंकि हम निमित्त बने। हमने क्लास में आना चालू किया, हमें देख करके जितने लोग भी क्लास में आना चालू किए, सबका पुण्य का खाता भी हमारे ऊपर, उसका भी शेयर मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है, एक का लाख गुना प्राप्ति तो एक का लाख गुना सजा। तो ये टीचर्स बहनों के लिए बोला। और आगे क्या बोला? पार्टियों से, इंदौर वालों से। वो तो बाबा की मुरली तो सबके लिए होता है, लेकिन खास अंत मति सो गति का अर्थ बाबा ने क्या बताया? कितना सुंदर अर्थ बताया, क्या बताया? हाँ, बाबा सृष्टि चक्र के अंत में आकर के जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारते हैं, अपने स्वरूप में लाते हैं, अपने कर्म में लाते हैं, वही पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। उन्हीं को ही सदगति की प्राप्ति हो जाती है, है ना? तो जो ज्ञान है वो हमें अपने जीवन में उतारना है। और फिर बाबा ने आगे क्या कहा? अच्छा, माताओं को क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, कभी बच्चों से तंग तो नहीं होते हो? अगर तंग होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, खूब ध्यान से सुन लिया है। तो क्या करना है? मेरे को और तेरा करेंगे तो फिर कैसे हो जाएंगे? तैरने लगेंगे। वाह वाह। और मेरा करेंगे तो, मेरा करेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि मेरा बोझ है ना, वो बोझ डुबा देगा। तेरा करेंगे तो हल्के रहेंगे, तैरने लगेंगे। तो कभी भी मेरा मेरा नहीं करना। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा धन, मेरा दौलत, है ना, मेरा घर, ये नहीं। कहीं भी कुछ भी आए तो क्या समझो, मैं बाबा का और मेरा सब कुछ बाबा का। जो सब कुछ बाबा का समझ करके चलेंगे, मेरा घर नहीं किसका घर, मेरे बच्चे नहीं लेकिन किसके बच्चे। तो जब हम बाबा को समझेंगे कि बाबा मुखिया है, बाबा मालिक है, बाबा जिम्मेवार है, तो जिसका जिम्मेवारी भगवान उठा लेगा तो उसका कैसा होगा कारोबार? आपके घर का मुखिया, मालिक, जिम्मेवार बाबा बन जाए तो आपका घर कैसा बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और आप मालिक बन करके रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सौंप दो मुझको मेरे बच्चे और उदास, मेरे बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे परेशान। तो बाबा कहता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप माताएं बताओ, आपका बच्चा उदास रहे, चिंता करे, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? क्या कहेंगे फिर आप? कहेंगे ना, हम बैठे हैं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे बाबा भी कहता, मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? तो सारा बोझ मुझे देकर के क्या रहो, हल्के रहो। लेकिन हमारी क्या आदत है, बिना बोझ उठाए चैन ही नहीं पड़ता। बार बार बोझ उठा लेते हैं। बाबा कहता, मुझे दे दो, लेकिन हम क्या करते हैं, आदत पड़ गई है बोझ उठाने की, चिंता करने की। बाबा कहते, 63 जन्म से तो चिंता करते आए, बोझ उठाते आए, थके नहीं हो क्या? हाँ? तो बाबा ने कहा, दे दो, हल्के रहो, लाइट रहो। अच्छा, वरदान, आज का वरदान क्या था? अपने मस्तक द्वारा क्या साक्षात्कार कराने वाले? हाँ, तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले क्या भाव? कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। सारी मुरली रिवाइज कर दिया। और वरदान, अच्छा, तो सच्चे योगी वे जो तीसरे नेत्र के द्वारा साक्षात्कार कराते हैं, तीसरे नेत्र का। लेकिन बाबा ने कहा, तीसरे नेत्र का साक्षात्कार तभी करा सकेंगे जब बुद्धि में क्या रहेगा, मेरा तो एक, दूसरा ना, और अगर तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो तीसरा नेत्र बंद ना होने पाए, अगर कोई भी देहधारी की याद आई तो तीसरा नेत्र बंद, किसी के अवगुण को देखा तो तीसरा नेत्र बंद। हाँ, बाबा कहते, तुम सतयुगी दुनिया देखो, परम धाम, अगर कलयुगी दुनिया में हमारी बुद्धि गई, कलयुगी दुनिया को देखा तो तीसरा नेत्र बंद। इसलिए बाबा ने कहा, तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। किसका खुला रहेगा? जिसका तीसरा कोई नहीं होगा एक बाबा के सिवाय। और अंत में यही बात आएगी हमारे सामने, बाबा ने कहा है ना, अंत में कौन सी परीक्षा आएगी, एक बाबा के सिवाय और किसी की भी याद ना आए। अच्छा स्लोगन सारे लोग बोल रहे एक साथ में, जैसे वो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहा? प्रश्नचित बनने के बजाय प्रसन्नचित रहो, है ना, तो कभी परेशान नहीं होंगे। जो प्रसन्न रहेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। तो प्रश्न नहीं उठाना है, क्या क्यों कैसे का क्वेश्चन नहीं उठाना है। अगर सदा प्रसन्न रहना है तो सारे प्रश्न खत्म। कौन से एक है? ज्ञान के आधार से प्रश्न, है ना, वो बात अलग है। लेकिन संशय के आधार से प्रश्न उठाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्यों क्या के क्वेश्चन में गए, तो खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए बाबा ने कहा प्रश्नों से पार प्रसन्न चित रहो, है ना। बाबा मिला है, हा? कौन मिला है? हाँ बाबा मिला है, स्वयं भगवान मिला है, भगवान टीचर बन करके पढ़ा रहा है, तो प्रश्न हो सकते हैं क्या? कोई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो बाबा ने यही कहा कि सदा प्रसन्न रहो, हर प्रकार के प्रश्नों को फुल स्टॉप लगा दो। तो आज की सारी मुरली आप सभी ने बहुत सुंदर ध्यान से सुना, और सारी मुरली आप लोगों ने ही रिवाइज कर दी। लेकिन हाँ, एक है सुनना और दूसरा है समाना, अपने जीवन में उतारना। तो आज की मुरली से क्या लेंगे होमवर्क? अगर नेचुरल योगी, सहज योगी बनना है तो क्या लेंगे होमवर्क? सारथी बन करके, ठीक है ना। तो सारथी बन करके रहना माना आत्मा राजा बन करके रहना। तो अभी हम 2 मिनट आत्मा राजा बन करके भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर बैठेंगे और फिर दूसरा सेशन चलेगा। ओम शांति।